ओम शांति। हम सबके बीच हमारी परम आदरणीय श्रद्धे मोहिनी दीदी जी पहुंच चुके हैं। आप सभी दीदी जी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन जरूर करेंगे। नूर से कोहिनूर बने, कोहिनूर से प्रभु नूर। अनगिनत विशेषता संपन्न है दीदी जी आप, आपके स्वागत में ताली बजाएंगे जरूर। हमारी दादियां संपन्न बनकर अव्यक्त रूप से भी हमारी पालना कर रही हैं, और साकार में हमारी दीदियां बाप समान बनकर हम सब की पालना कर रही हैं, हम सबको स्नेह दे रही है, हम सबको सकाश दे रही हैं। ऐसी हमारी परम विभूति आदरणीय मोहिनी दीदी जी, आप संस्था की मुख्य प्रशासिका हैं। साथ ही अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में कैरेबियन कंट्रीज में अपनी आपने सेवाएं दी। युवावस्था में संस्था के आध्यात्मिक ज्ञान ने आपको प्रभावित किया। 60 वर्षों से अनवरत सेवाएं आप दे रहे हैं। भारत और विदेश के कोने कोने में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार आपने किया। 1978 से अमेरिका में आपने सेवाएं दी। यूनाइटेड नेशन में एनजीओ में संस्था के प्रतिनिधित्व दिलाने में आपका बहुत योगदान रहा। स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन आज की लाइफ में बहुत आवश्यक है, इसे समझाते हुए एक कॉल अप टाइम प्रोग्राम को आपने वर्कआउट किया, जिसके प्रोग्राम समय प्रति समय हर जगह पहुंचते हैं। मैं तो यही कहूं कि भारत के सत्य ज्ञान और दिव्य ज्ञान की ब्रह्मा कुमारी संस्था को अंतर्राष्ट्रीय पहचान आपने दिलाई है, वह है आप। फाउंडेशन आप ही है। आपका एक सीक्रेट, वह है आपको टी पसंद है, पता है कौन सी टी? प्योरिटी, रॉयल्टी, ऑनेस्टी, सिंपल सिटी और स्पिरिचुअलिटी। तो सचमुच हम सबको भी यही पसंद होगी। तो आज आपके व्यक्तित्व में वो दिखाई देता है और उसकी सुगंध हम सब कुछ फील करते हैं। आज आपके क्लास का विषय ही है बीजरूप स्थिति द्वारा अलौकिक अनुभूतियां। दीदी जी आधा घंटा इस पर क्लास कराएंगे और उसके बाद हमारी रशिया की संतोष दीदी जी आएंगे, वो क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। आप सबकी तरफ से दीदी को पूछेंगे, दीदी आंसर देंगे। तो अभी आदरणीय दीदी जी से सुनेंगे।
सभी प्रेम से बोलिए ओम शांति। ओम शांति। इतना सुंदर गीत चल रहा था, तपस्या से जीवन में कौन से गुण अनुभव होते हैं, पता नहीं पूरा था गीत, तो थोड़ा कम था, मधुरता भी आएगी, रॉयलिटी, सब जितने भी गुण हैं वो तपस्या से आएंगे। त्याग में तो, त्याग करने में तो हम सभी ने हाई जंप लिया, लौकिक संबंध को, व्यवहार को अलौकिक बनाया, देहधारियों में भी आत्मिक संबंध अलौकिक संबंध बनाया। बाबा तो कहते ही हैं कि तुम बच्चों का जो वैराग्य है वो सारी पुरानी दुनिया से है, सिर्फ घर से, संबंधों से नहीं है। तो त्याग, तपस्या और सेवा, हम सभी को बाबा के पास आए, अब में से कोई बाल अवस्था में, कोई युवा अवस्था में, कोई कुछ और बड़ी आयु में, भिन्न भिन्न समय पर बाबा का परिचय मिला। मेरा भी बालकाल ही बाबा के साथ, बाबा और मामा और हमारी दादी उनके साथ व्यतीत हुआ। तो निश्चय हुआ एक बार हम लोग कुछ मुख्य भाई बहन ब्रह्मा बाबा के साथ उनके कमरे में बैठे थे, तो बाबा ने पूछा एक एक से, आपका निश्चय कितने परसेंटेज है? तो हम सभी एकदम, क्योंकि अभी अभी हम लोग सब समर्पित हुए थे, तो हम सभी ने कहा बाबा 100%। तो बाबा मुस्कुराने लगे, 100%? बाबा ने कहा नहीं। तो हम लोग को थोड़ा लगा कि हम तो बाबा पर निश्चय के आधार पर ही अपने जीवन को बाबा और सेवा के प्रति समर्पित किया है। बाबा ने कहा नहीं, 70%, 60%, किसका 50%। तो हमको थोड़ा सा ऐसा लगा कि क्यों ऐसे बाबा कह रहे हैं। फिर अनुभव करते करते एक होता है निश्चय, दूसरा होता है विश्वास। निश्चय बुद्धि से होता है और विश्वास दिल से होता है और अनुभव से होता है। हम लोगों के पास भी एक बड़ा स्थान है जिसका नाम हमने पीस विलेज रखा है। ये तो शांतिवन है, वो पीस विलेज है इंग्लिश में। तो बहुत 300 एकड़ जमीन है, लेक भी है, पहाड़ी है, सब अंदर ही प्रॉपर्टी में है। तो एकदम नया था, हमने कभी 110 कमरे, बड़े बड़े ऑयल टैंक, वाटर टैंक एक्सपीरियंस, हमने कोई होटल तो चलाए नहीं थे। तो कभी कभी कोई ऐसी बात आती थी। तो एक बार रात को कुछ ऐसा कोई बात थी, समस्या भी नहीं थी, पर कोई ठीक करना था कुछ। तो मेरे को रात को थोड़ा नींद खुली और उसके संकल्प चलने लगे कि कैसे ठीक होगा, इसका क्या होगा। फिर मैंने बाबा को देखा, बच्ची तुमको निश्चय है ना? मैंने कहा 100%। विश्वास है तुम्हारा मेरे ऊपर? तो मैं बोला 100%। बाबा ने कहा नहीं, तुमको ये जो विचार आ रहा है ना, एक चिंता होती है जिसको वरी बोलते हैं, और एक होता है कि हमें ख्याल चल रहा है जिसको हम इंग्लिश में कंसर्न बोलते हैं, कि चिंता नहीं है पर थोड़ा ख्याल चलता है। तो बाबा ने कहा देखो, अगर मेरे ऊपर विश्वास है और ये भी विश्वास है कि बाबा का कार्य है, और ये भी है कि बाबा करण करा मना रहे हैं, फिर ये संकल्प क्यों आने चाहिए? उस दिन से बहुत अटेंशन गया कि बाबा पर निश्चय करके कार्य करते हैं या अपने व्यक्तिगत जीवन की संपन्नता के लिए बाबा को याद करते हैं। तो उसके जो अनुभव हैं, तो क्या हुआ, जो बात थी तो दूसरे दिन 10-11 बजे एक छोटा पहाड़ी है, बिल्कुल आबू की तरह 4000 फीट ऊपर है और बहुत ही पहाड़ी, सुंदर पहाड़ी है। रास्ते भी नीचे से आप आबू रोड से बाउंड तक आते हैं वैसे ही लगता है, जैसे जैसे जाएंगे ना जैसे ऊपर जा रहे हैं। मैं आजकल तो बहुत स्नो है वहां पर, कश्मीर जैसी स्नो होती है। तो दूसरे दिन 10-11 बजे टाउन के कुछ ऑफिसर्स आए, तो जो बात हम सोच रहे थे तो उन्होंने आकर के कहा हमको ये काम करना है, हम 1 घंटे में करके चले जाएंगे। अभी हम तो कहेंगे बाबा ने सुनी, और बाबा कहेगा कि हाँ आपके विश्वास ने भी काम किया। तो कहने का भाव ये है कि जितना जितना निश्चय से कुछ करते हैं और उस समय जो हमें अनुभव होते हैं, अनुभव होने से निश्चय हमारा बढ़ता जाता है। तो 100% तो है ही, बनना भी है, लेकिन यात्रा में कई बातें कई परिस्थितियां जब आती हैं तो कोई भी व्यर्थ संकल्प, चिंता का संकल्प, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, यहां कोई है जिसको ऐसे संकल्प बिल्कुल नहीं चलते? कोई हाथ खड़ा करो ना, कोई तो करो, चलो थोड़ा ही कर दो, लंबा नहीं कर, सभी को चलता है। तो इसको कहते हैं कि दिल से विश्वास रखो। तो हमारी जो दादियां थी, मैं आज भी उनकी कई बातें याद करती हूं कि बाबा ने कहा, उनको 100% निश्चय हुआ और वो कार्य हो जाता था। तो जब पार्टीशन हुआ, फिर 1951 में जब ये लोग आबू में आए, 1 साल के बाद ये लोग 51 में आए, 1 साल के बाद बाबा ने इनको सेवा पर जाओ। तो जो भी जिनका कोई संबंधी है, कोई संपर्क है, सबने देखा। तो हमारे लौकिक परिवार वाले कराची में जाते थे तो उनके पास हमारी भी एड्रेस थी। तो दादिये, उस समय तो हम बहने ही कहते थे, दादिया नहीं कहते थे, उनका इतिहास में आपने देखा कि बाबा सदा ही 2 गुण बाबा के, ब्रह्मा बाबा के, ऐसे तो सर्वगुण संपन्न बने, एक हर्षित मुख था। अभी इतना पार्टीशन हो रहा है, 300 बहने हैं, उनको पार्टीशन जब धर्म के मतभेद से होता है तो बहुत खतरनाक होता है। जिसको बाबा कहते हैं ना, खून की नदी, चरित्रहीनता, बहुत कुछ तरह की हिंसा होती है। बाबा ने सबको बोला, देही अभिमानी स्थिति में रहकर जो भी बाबा की याद में होगा उस पर कोई नजर भी नहीं उठा सकता। और उसका प्रैक्टिकल अनुभव कि सब बहने न केवल सेफ रही परंतु उनको हर तरह की सुविधा, उस समय पार्टीशन के बाद फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट तो मुस्लिम गवर्नमेंट थी और भारतवर्ष में अपनी हिंदू धर्म की सरकार थी, गवर्नमेंट थी, वो सब प्रबंध देते थे। सब प्रबंध, खाना भी देते थे, जो उनको चाहिए, बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हमसे कई लोग ये परिस्थिति आ गई, क्या करें? बाबा ने क्या किया? नए कानून कायदे बनते रहते हैं, तो एक बार कोई दया कानून बना तो हमने दादी गुलजार को बोला कि बाबा से पूछिए आप क्या करना चाहिए। बाबा ने कहा जो भी बात सामने आती है उसमें एक सेवा का अवसर मिलता है। तो हमने कहा वो कैसे, हमारे सामने रुकावट है, कानून बन रहा है और हमें पता नहीं अभी कैसे करेंगे। तो बाबा ने कहा यही तो सेवा का अवसर है, आप लोग जाओ ऑफिसर से मिलो, उनको बाबा का परिचय दो, ये तो सेवा का सेवा की अपॉर्चुनिटी है। जो भी रुकावट आती है तो हम लोग जब कई देशों में जाते हैं तो भारत के जो नागरिक होते हैं उनको वीसा लेना पड़ता है हर जगह का, और मैंने अपनी नागरिकता बदलना नहीं चाहती थी। तो मैंने कहा ठीक है वीसा लेने जाएंगे पर मैं अपना पासपोर्ट भारत का ही रखूंगी, यूएसए का नहीं बनाऊंगी। तो जाते थे सबके पास, कभी तो कोई किसी को भेजते थे वो ले आते थे। तो एक गवर्नमेंट के उन्होंने कहा नहीं उनको आना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो, रक्षाबंधन का दिन था, थोड़ी सी राखियाँ डाली, थोड़ी थोली तिलक सब एक बैग में डाल के हमने कहा चलते हैं। तो वहाँ जब पहुँचे तो वो जो वहाँ का एम्बेसडर था जिसको वीसा देना था वो बहुत जैसे नहीं इतना खुश हो रहा था। तो उसके सेक्रेटरी ने कहा हमारे साहब पहले कभी इतने खुश नहीं देखे जैसे आज, बोला उनको बुलाओ अंदर बुलाओ। तो हम गए उनके सामने बैठे तो बोला मैं आज याद कर रहा था कि कोई बहन आए जो मुझे राखी बांधे। तो जब मैंने आपको देखा मैंने सोचा मैं आपको कहूँगा राखी बांध लो। तो कारण वीसा का था और पुकार एक आत्मा की थी। कई बार बाबा कहता है बच्चे भक्तों की पुकार नहीं सुनाई पड़ती है, दुखियों की पुकार नहीं सुन। तो फिर अपने उसने कहा ठहरो मैं अपनी वाइफ को बुलाता हूँ, और प्रेम से राखी का सारा हमने उनके ऑफिस में बैठ के फिर सबको बुलाया, अपने स्टाफ को बुलाया। तो मैंने ये सोचा कि मुझे यहाँ वीसा नहीं मिला और मुझे आना पड़ा, सेवा थी। हम आपको ऐसे हजारों इंस्टेंसेस या कारण बताते हैं जिससे सेवा हुई। तो जब निश्चय होता है तो बाबा के महावाक्य याद आ रहे चाहिए। ब्रह्मा बाबा की हर्षित मुक्ता, बाबा साथ है सफलता और विजय हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है। तो एक बार जब सेवा शुरू हुई सब जाने लगे तो बाबा ने दादी गुलजार को लखनऊ में कोई निमंत्रण था, बच्ची जाओ फर्स्ट क्लास में जाना और वहां पर राजभवन में रहना। अभी दादी उन समय तो पैसा ही नहीं था फर्स्ट क्लास में, कैसे हम सभी थर्ड क्लास में घूमे, आजकल तो कोई एयर कंडीशन में, थर्ड क्लास में कई बार बिना रिजर्वेशन के बाबा बुलाता था, कोई अर्जेंट सेवा आ गई बच्ची आओ, बैठ जाते थे ट्रेन में सवेरे पहुंच जाते थे। तो फर्स्ट क्लास की क्या बात है। तो दादी गुलजार थी एक बहन जा करके थर्ड रेगुलर क्लास से बैठी और कहती रही हमको तो फर्स्ट क्लास में जाना है। तो वो कंडक्टर कहता है भाई टिकट दिखाओ, तो टिकट ही नहीं थी एक के पास, तो इतना पैसा भी नहीं था। तो उसने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है, पर फर्स्ट क्लास में तुमको कैसे बिठाऊं? उनको याद आता रहा पापा ने कहा फर्स्ट क्लास, राइट? तो वो छोड़े ही नहीं उस बात को, फर्स्ट क्लास में जा रहा है। तो वो कंडक्टर ने सोचा ये पवित्र बहने लग रही है, बिठा देते हैं फर्स्ट क्लास में, चलो। तो एक स्टेशन आई, वहां उतरे, उनको फर्स्ट क्लास में बिठा दिया। आप आश्चर्य करो कि कोई ऐसे, पर उनका जो अंदर में बाबा ने कहा है ना, एक विश्वास जो था बाबा ने कहा है। फिर उतरे, जहां लखनऊ पहुंचे तो रिक्शा में बैठे, तब तो टैक्सी वगैरह की बात ही नहीं थी, थोड़ा सा सवाल था रिक्शा में रखा, उसको बोला राजभवन चलो। तो उनको देखने लगा बैठे रिक्शा में, बात राजभवन की कर, कोई गाड़ी नहीं कुछ नहीं। बार बार कहे कहाँ जाना है, कहाँ ले चले राजभवन में। तो उन्होंने कहा ठीक है, राजभवन में लेके गए, वह उतरे। तो जो राजभवन पहुंचेगा, क्या है कि बड़ी बड़ी गवर्नमेंट में सभी के कुछ क्वार्टर्स होते हैं, हम लोग भी कई बार पहले आते थे ना, तो रास्ते में कई जगह पहचान होने के कारण वो खोल देते थे सारे। तो उन्होंने सोचा देखो उतरे हैं, आए हैं, उनको सामान लगवा दिया, बताया ये तुम्हारा कमरा है ये वो। फिर बाद में ऐसे ही पूछा भाई कोई पत्र है कुछ है, कैसे पता लगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अभी जिसको आपने कमरे दे दिए उसको उठा के निकालेंगे तो नहीं ना, वो भी माताओं बहनों को। तो वो लोग राजभवन में रहे, फर्स्ट क्लास में गए, राजभवन में उतरे, क्योंकि बाबा ने कहा है। तो देखो प्राप्ति की मैं बात नहीं कर रही हूं, निश्चय की। ऐसे ही आज कोई प्रश्न आते हैं, कोई परिस्थिति आती है, बाबा ने क्या कहा है, बाबा ने क्या किया, बाप दादा ने क्या किया साकार में। ये जितना मन में संकल्प चलता रहेगा उतना फिर करण करावधार बाबा हम सबको निमित्त बनाकर वो कार्य करते हैं। भारतवर्ष की तो बहुत दादियों की तपस्या, त्याग और तपस्या, सेवा इतनी कनेक्टेड थी। हम लोगों का फिर भी कई लोग कहते हैं टाइम नहीं मिलता, बहुत बिजी रहते हैं, कैसे करें स्व उन्नति कैसे करें, पर दादियों को ये प्रश्न नहीं था। बाबा ने कहा है वही हमारा सोच है, जरूर होगा। तो जिसको बाबा कहता है ना दृढ़ता, तो उससे जो उनकी स्थिति थी, मामा थी, आपको बालू है, बहुत बड़ी आयु नहीं थी, पर उनके तल के कारण, तबीयत के कारण, तो पूछते थे मामा से। पता है कि हमें पता था डॉक्टर से कहा इतने दिन मामा निकालेगी, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपको जर्मनी से ये इंजेक्शन मिल जाए, अभी हमें जर्मनी में कौन जानता था, तो कुछ कर नहीं सके। तो ऐसे ही दादी ये बैठती थी, मामा आपको क्या विचार चल रहे, आपको पता है आपका तन बहुत दिन आपको साथ नहीं देगा, क्या विचार चल रहा है। मामा ने कहा ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा एक्यूरेट है, दादियों की, मामा की, बाबा की, उनकी जीवन में ये रूहानी यात्रा में देखते हैं तो जो निश्चय और पूरा विश्वास मुझे तो बाबा ने जब से ये कहा, बच्ची अगर तुमको निश्चय विश्वास है तो ये क्यों सोच रही हो? अभी भी कभी कभी होता है, पर फिर बार बार बाबा ने ये कहा है ना। अभी आना था न्यूयॉर्क से, 24 घंटे लगते हैं वहां घर से निकल के, जब यहाँ शांति में पूरे 24 घंटे। तो जब होते हैं बाबा मैं ले चलूंगा ना, आप कहते हैं चलो, निकल पड़ते हैं, ठीक से पहुंच जाते हैं। तो कैसे सर्वशक्तिमान से सर्वशक्ति हमें लेनी है, हमारा हर परिस्थिति में अपनी स्थिति बाप समान रहे, उसके लिए हमको निश्चय भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए। तो अनुभव होता जाता है, विश्वास बढ़ता जाता है। ड्रामा में जो कुछ होता है कल्याण होता है। तो एक भाई था, उसने अपनी गाड़ी बाहर छोड़ी, लॉक नहीं किया, तो कोई चोरी करके ले गया। कहता है मोहिनी मैंने इसमें क्या कल्याण है? का सबसे पहला कल्याण तो ये, आपने लॉक क्यों नहीं की, आप सीखो। बोला मैंने सोचा बाबा की है, लॉक करने की क्या जरूरत है। नहीं, कई इस तरह से भी सोचते हैं। तो अनुभव करने के लिए आप किसी को बता दो भाई ब्रेड ऐसे बनती है, केक ऐसे बनता है, तो वो कहते हैं मुझे मालूम है केक कैसे बनता है, पर कभी बनाया नहीं था। जब बनाना शुरू किया तो बोला अरे अच्छा, लिखा हुआ है कि इतना नमक डालो, इतनी चीनी डालो, पर बनाया तो नहीं था। तो केक फूला ही नहीं, फ्लैट था। तो बोला रेसिपी तो अच्छी थी। तो रेसिपी ज्ञान का मतलब है कि रेसिपी तो है, पर जब तो उसको हम ज्ञान के एक एक महावाक्य को जीवन में अपनाया नहीं है, तब तक अनुभव ही मुहूर्त नहीं बनते। न केवल अनुभव ही मुहूर्त, पर आजकल बाबा कहता है कि आपका जो स्वरूप है, आपका चेहरा और चलन, आपका स्वरूप बताएं, और पता लगता है। हम लोग न्यूयॉर्क में गए तो कहाँ रहे, क्या करें, थोड़ी बहुत जान पहचान थी भारत के भाई बहनों जो गए हुए थे। तो मैंने सोचा थोड़ा छोटा सा फ्लैट ढूंढते हैं, पैसे भी तो बहुत नहीं थे, तो फ्लैट ढूंढने निकले भाई, कोई छोटी सी जगह मिल जाए तो थोड़ा शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे। तो देखते थे, एक न्यूज़पेपर था इंडिया अब्रॉड क्लब था उसका, उसमें रेंट करने के लिए, इंडियंस के पास रेंट करने के लिए लिस्ट होती थी। तो एक को मैंने फोन किया, मैंने कहा हमको जगह चाहिए और आपके पास आए हम लोग। कहता हो, तो हम लोग गए तो हम नहीं चाहते थे उसको बताना कि ये मेडिटेशन के लिए ले रहे हैं, क्योंकि वो पब्लिक के लिए हो जाता है ना। तो हमने उसको बोला ये हमको इंटरेस्ट है, आप ये हमको किराए पर दो। कहता है मैं तो आपको जरूर दूंगा, पहले ये बताओ आपके पास एक कोई खजाना है? तो मैंने कहा, फिर भी मैं चुप रही क्योंकि हम चाहते ही नहीं थे उसको पता लगे। कहता है मैं आपको दूंगा 100%, पहले ये बताओ आपके पास क्या गुप्त खजाना है। फिर मुझे बताना पड़ा कि ज्ञान का खजाना है, गुणों का खजाना है, शक्ति का मुझे पता लग रहा था। तो ऐसे ही बाबा देखो आजकल तो चेक लिख के दे दो, पैसा दे दो। हम लोग के पश्चेवक की डेली में पैसे तो थे नहीं, इतने तो नहीं थे। तो मधुबन में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, तो उन्होंने बोला कि छोटे टेलीविजन से हम अलग अलग हॉल में रखेंगे। तो मैं और भाई साहब रिजवन भाई, हम दोनों और एक और बहन थी, बहुत बड़ी कंपनी थी टेलीविजन वालों की, उनके पास गए। हमने कहा देखो ये सेवा हो रही है, ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये ऐसे ऐसे करके बताते रहे। तो फिर अपने आप ही कहता है कितने टेलीविजन चाहिए। हमने कहा 25 के करीब चाहिए। ठीक है आपके पास पहुंच जाएंगे। जो सेवा करते थे वो अपने स्वरूप से बाबा की याद में, पैसे से दिखी कभी। फिर बाबा कहता था बच्चे एयरपोर्ट के पास बड़े बड़े होर्डिंग लगाओ। अब एक एक होर्डिंग का एक महीने का 40,000 रुपए कहां से लाएंगे। मैं एक जगह पर गई, पता नहीं बेंगलुरु में मैसूर में, तो वह होर्डिंग नहीं थी। मैंने कहा होर्डिंग क्यों नहीं लगाई, कहा इस बार कोई स्पॉन्सर नहीं मिला। मैंने कहा चलो फिर ट्राई करते, अभी 2 दिन है। हमने एक दो फोन घुमाए, जिसको भी फोन लगाया सब कहते हैं या मेरी एक होर्डिंग खाली है, मेरी एक होर्डिंग खाली है। 2 दिन पहले 10 होर्डिंग लग गई। और आपको पता है भारतवर्ष में बड़ी होर्डिंग लगे तो जनता उनको देख के आगे बढ़ती जाती है। तो कितने बाबा के महावाक्य, बाबा की शिक्षाएं, ब्रह्मा बाबा के जीवन के अपने हर प्रकार से बाबा निर्विघ्न रहे। विघ्न तो बाहर थे, हम लोग तो विघ्नों को सोच के विघ्न ले लेते हैं। तो इसलिए निश्चय और विश्वास। मैं तो जीवन में एक बल एक भरोसा, संतोष दीदी को भी अनुभव है रशिया में गए, हमें भी अनुभव है अमेरिका में गए। तो क्या कितने दरवाजे खटखटाए, कितनी तरह के लेकिन हमें ये पता था कि बाबा ने भेजा है तो ऐसे ही तो नहीं वापस जाएंगे। ये बाबा ने मुझे एक बार, हम लोग कश्मीर फैमिली के साथ जा रहे थे, सभी फैमिली में तब तक ज्ञान में थे। बाबा ने कहा कोई हॉलीडे होती नहीं है। मैंने कहा तो बाबा जाना तो है। बोला जाना है तो वहां सेंटर खोलना होगा। तो हम तो घूमने जा रहे थे कश्मीर, अब जैसे ही वहां पहुंचे तो मकान ढूंढने लगे। बाबा ने कहा सेंटर बनाना सर। इतनी अच्छी कहानी है। 3 साल जम्मू कश्मीर में थी, ये 62 की बात है, तब हम लोग 21-22 साल के होते थे। गर्मी है दिल्ली में तो नैनीताल में एग्जीबिशन करो, सब लोग पहाड़ों पर जाते हैं, वहां बड़ी बड़ी एग्जीबिशन लगाओ। और छोटा हिल स्टेशन होता है, एग्जीबिशन लगाते थे। तो गवर्नर वहां का, वो भी गर्मियों में ऊपर रहते हैं, सबकी सेवा होती रही। और उसकी सेवा फिर भारतवर्ष में, किसी ने बहुत बड़ी जमीन दी, किसने जो भी सेल्वेशन हम मांगते थे। कोई टाइम पर रेशनिंग होती थी तो 1 किलो चीनी 1 को मिलती थी। तो बाबा ने मुझे लिखा बच्ची 1 चीनी तो यहाँ पर चाय में भी नहीं पूरी होती, सब बच्चों को मीठी चाय चाहिए, भोग बनाना होता है। तुम गवर्नमेंट किसी ऑफिसर को बोलो तो मैंने कहा ठीक है। मैं तो मिनिस्टर को डायरेक्ट फोन लगाया, मैंने कहा साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो लोग भी सोचते एक यंग पर्सन कुछ कह रहा है, वो भी बहन आप आ जाओ। फिर मैं उनको कहती थी भाई ऐसा मुझे माउंट आबू से आया है, अब थोड़ा गेहूं ज्यादा दे दो, थोड़ी गेहूं ज्यादा दे दो, थोड़े चावल दे दो। बोला कितना है लिख के दे दो। तो मैंने फिर बाबा से पूछा यज्ञ में जो चलाने वाली बहनें थी कितनी चीनी चाहिए, जितनी चाहिए अभी आपको सप्लाई होती रहेगी। हमको भूरी दादी आबू रोड में लेने आती थी तो एक टेम्पो लेके आती थी, खरीदती थी सब्जियां और सब सब्जियां टोकरे बीच में रखती थी और हम लोग सब साइड में बैठते थे। वो उनकी सब्जी भी जाती थी हम भी जाते थे, सभी कईयों को याद होगा। तो मेरे को मन में आया कि इनको तो ट्रक होनी चाहिए। तो हमने कहा चलो हम पता करते हैं। उन दिनों में मिलिट्री में जब ट्रक थोड़ी पुरानी होती है ना तो वो बेचते थे। तो मेरा एक कोई लौकिक में था, उसने मुझे बताया कि आपको ट्रक चाहिए तो आप मिलिट्री वाले जो पुरानी ट्रक निकालते हैं वो ले लो। 4,000 रुपए में थी उस समय, मुझे अभी भी याद है। हमको इतनी खुशी हुई एक ट्रक हमने फिर यहाँ पर भेजी। मैंने कहा सब्जी ट्रक पे लाओ, हम लोग ट्रक में नहीं आए, हम लोगों को अच्छी तरह से किसी में ले जाओ। तब तो गाड़ियाँ होती नहीं थी ना, फिर बसों में आने लगे नीचे से ऊपर तक। तो बाबा की जो कहानी है, बाबा ने जो अनुभव कराए हैं, हमारे एक एक अनुभव से निश्चय से जो यज्ञ को से हम पालना लेते हैं, हमारा ही यज्ञ है। यज्ञ से हमें पालना मिल दिया और हमने यज्ञ को जो सहयोग हमसे मिल सके किसी भी तरह का वो हमें देना होता है। तो इसलिए बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिल रहे हैं।
और हम सबको भी बहुत खुशी है कि दीदी हमारे बीच में आके पहुंचे हैं, है ना? तो ऐसे करके डबल थाली बजाएं। तो कुछ दिन पहले दीदी से बात हो रही थी कि बाबा ने आपको अपनी गद्दी पर बिठाया है तो आपने अपना पूरा ब्राह्मण जीवन जो श्रृंगार किया है तो हम उस श्रृंगार को एक एक को देखना चाहते हैं। तो आप देखना चाहेंगे कैसे दीदी ने बाबा के ज्ञान रत्नों से अपना श्रृंगार किया है? वुड यू लाइक टू सी? तो देवियों का जो पूजन होता है तो श्रृंगारी हुई देवियों का पूजन होता है, लेकिन बाबा ने बोला ये है ज्ञान रत्न। तो मेरा आज प्रश्न है, अगर दीदी इजाजत दें तो, क्योंकि टाइम थोड़ा है, थोड़ा सा ट्रैफिक के बाद आप बैठेंगे, खुशी से बैठेंगे कि भोजन के लिए भागेंगे, ये फिर मौके थोड़ी मिलते हैं। तो कि आपने बहुत दिल से, क्योंकि मैंने तो खुद 48 इयर्स से देख रही हूँ, क्योंकि दीदी भी दिल्ली से थे, फिर अमेरिका में बाबा ने भेजा, और जो पहली बार विज्ञान भवन में प्रोग्राम था तो उसके निमित्त जब आए तो दीदी ने स्टेज पर खड़े होकर के, जैसे मामा की इमेज होती है, वो योग मेडिटेशन जो कराया पहली बार जो देखा, उस समय मैं कॉलेज से आती थी, तो बिल्कुल एक मिनट के अंदर ऐसी सभा जो कुछ ध्यान से ना सुन रही थी ना चाहती थी, लेकिन दीदी का स्टेज पे आना हुआ और सारा वातावरण बदल गया। तो शुरू से ही दीदी का जो विशेष मैं पुरुषार्थ शब्द नहीं कहते इनके लिए, हो रहा वो साइलेंस। कभी भी मन को उन्होंने किसी चीज से प्रभावित नहीं होने दिया। तो दीदी आपसे प्रश्न है कि जैसे बाबा नवरत्नों का श्रृंगार करते हैं, तो नौ रत्न की अंगूठी, क्योंकि बाप को जब पकड़ते हैं तो बच्चा अंगूठी से उंगली से पकड़ता है, तो ऐसे कौन से वो नौ रत्न हैं, नौ शिक्षाएं हैं, नौ अभ्यास हैं जो बाबा ने आपको रिंग पहनाई है नौ रत्नों की? तो आज हम आपकी वो अंगूठी देखना चाहते हैं, देखेंगे। फिर उसके बाद कंगन भी होगा लेकिन शायद आज नहीं, फिर हार भी होगा लेकिन आज अंगूठी का बता दीजिए।
ज्ञान तो मिलता ही है परंतु वरदान मिलते रहे और वरदानों के आधार पर जीवन चले। तो मुझे हमेशा दादी ये कहती थी, तुमको कभी मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि तुम वरदानों से पल रही हो। तो फिर वरदान के पात्र कैसे बने? बहुत जब भी 11-12 वर्ष की आयु थी, जब ऐसे बाबा का परिचय मिला कि एक बाबा एक पहाड़ी पर रहता है, तो हम लोग की कल्पना ऐसी थी कि एक पहाड़ी पर एक कोई बुजुर्ग बाबा रहता है। मैंने कहा भाई वो बाबा क्या खाता पीता है, पत्र लिखता है, हम भी कुछ उसको करें, ऐसे मन में उत्सुकता थी। क्योंकि हमारे घर में लौकिक नाना जी के पास सभी दादियां आती थी, सहयोग चाहिए होता था कोई ना कोई, तो वो लोग ये करते थे। तो बाबा ने पहली बात, मैंने कहा बाबा आप कैसे बच्चे अडॉप्ट करते हो, किसको करते हो? तब शिव बाबा वगैरह का पता नहीं था, हमारे लिए तो यही बाबा थे। बाबा ने कहा बच्चे कुछ नहीं, रोज सवेरे उठो, अमृत वेला करो और मुरली सुनो। तुम एक सेंटर खुला था जो 20 मिनट की दूरी पर पैदल, और उन दिनों में क्लास होती थी 5 बजे सवेरे, क्योंकि बाबा कहता था माताएं आए मुरली सुन के घर जाए, बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह दे। कल ऐसे नहीं कहे कि ब्रह्मा कुमारी के पास गए, पहले ही विरोधी बहुत बहुत विरोध था उस समय। दिल्ली के ओल्ड दिल्ली के हर दीवार पर लिखा होता था ब्रह्मा कुमारियों के पाखंड से बचो, हर दीवार पर। और हमको लोग कहते थे आप ये देख रहे हो तो भी आप जाना चाहते हो, लेकिन बाबा ने कहा 5:20 पर घर से निकलते थे, दौड़ते दौड़ते वहां सेंटर पे पहुंचते थे। 5 से 6 क्लास होती थी, अभी कॉलेज शुरू ही किया था, तो वहीं से सीधा फिर कॉलेज चले जाते थे, और कॉलेज के बहाने घर से निकलना भी मिल जाता था, इसलिए भी पढ़ते रहे कि चलो ये जो समाज की तरफ से परिवार को एक दबाव आता है कि शादी क्यों नहीं कर रहे, क्या दहेज के पैसे नहीं है, हम कराएंगे सारे लौकिक में, मैं करा दूंगा। इतना मतलब समाज का प्रेशर रहता था। तो सबसे पहला जो मैंने मन में संकल्प लिया वो है आज्ञाकारी बनना। बाबा के महावाक्य है, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि भगवान दाता है, सब है, मैं बहुत भक्ति करती थी। दाता को देना होता है पर देने के लिए कोई उसको भी कारण चाहिए ना, मैं क्यों दे रहा हूं। नहीं तो कोई क्वेश्चन करेगा ना कि इसको क्यों नहीं दे रहे, उसको क्यों नहीं दे रहे। तो कई लोग आज्ञाकारी को थोड़ा अंदर में ऐसा समझते, मैं क्यों किसी के कहने पर चलूंगा, क्यों मुझे आज्ञा की जाती है। हमने कभी दादियों को कुछ भी उन्होंने कहा ना नहीं कहते थे, कभी नहीं। कई बार अंदर से लगता था कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, असंभव तो नहीं कहते भाई, ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, परंतु ना नहीं कहते थे। फिर दादी हमको खुद ही बुला के कहती थी, मोहिनी मैंने सोचा बेशक तुम ये मत करो। अच्छा, आज के दिन पूरी नौ की अंगूठी तो नहीं दे सकते
जी,
आप सुधार के पास छोड़ दीजिए, बंटवा लेंगे।
लेकिन तो एक इतना सुंदर रत्न आज्ञाकारिता का, तो हम थोड़ा अपने अंगुली को देखें कि जैसे दीदी का ये रत्न चमक रहा है, शुरू से लेकर के अंत तक बाबा की हर शिक्षा को पालन किया और दादियों की, क्या मेरे पास ये रत्न बाबा का सुसज्जित है, इसके लिए हम सुन रहे हैं, खाली सुनने के लिए नहीं। ओके, चेक कर रहे हैं ना,
तो थोड़ा कंप्लीट कर लो उसको। देखो, आज्ञा में फरमान भी होता है, राय भी होती है। तो जैसे ही दो तीन बातें ब्रह्मा बाबा कुछ उनके पास रहे तो सीखते थे, आपको कोई बात है उसकी राय लेनी है, तो राय लेने के लिए आप उसके पास जाते हो, किसी से कईयों से राय लेते हो, और फिर आप बाबा के पास जाते हैं, बाबा आप क्या आज्ञा करते हैं या राय देते, और बाबा को पता है कि आपने पहले बहुत राय ले ली है, तो बाबा ने कहा बच्ची आपको तो राय मिल गई है ना, तो हमने क्या सीखा कि पहले बाबा से पूछो फिर औरों से पूछो, समझा, ये बहुत था। तो बाबा से तो हमने पूछा नहीं था, पर आपसे पूछा, उससे पूछा, उससे पूछा, तो ये बाबा के साथ था। बाबा को कौन से बच्चे प्रिय लगते हैं, तो बाबा कई बार यहाँ गवर्नर आया, मीडिया वाले लोग आते थे, कोई भी आता था, तो मैं दिल्ली में थी उन दिनों में, तो टेलीफोन वगैरह की बात ही नहीं, टेलीग्राम आती थी, ईमेल भी नहीं था, बच्ची कल 11 बजे तक आप आ जाओ, अभी कोई बुकिंग वगैरह नहीं होती थी, तो हमारी दीदी मन मोहिनी थी, वो भी हमको ये सिखा, बाबा कहे और आप कर लो। तो उन्होंने एक बात हमको बताई कि आप जगत माता हो, आप 16 साल की कन्या नहीं हो, तो ट्रेन में बैठो सिर ढक लो, तो सब सोचेंगे माता जी बैठी है, क्योंकि उन दिनों में ऐसे लड़के घर से निकल के ट्रेन में बैठ जाए, वो फैमिली वाले थोड़ा अपमान सा समझते थे कि ये क्या, और फर्स्ट क्लास के तो उन दिनों में टिकट नहीं खरीदते थे। तो एक तो ये कि जगत माता हो, जगत की सेवा के लिए हो, जैसे दादी जानकी हमेशा कहती है कि ये नहीं बोलो मिस सो सो, इसका मतलब आप कुछ मिस कर रहे हो। तो जैसे बाबा सेवा के लिए डायरेक्शन देते थे, एक बहुत अच्छा नया फॉर्मूला वो हमारे दिनों में निकला था, जब पहली मीटिंग हुई तो हम 12 बहने थे, 12 थे, फिर 25 हुए, फिर एक बार 50 की मीटिंग हुई, तो सब राय दो, अपना अपनी राय दो, और फिर एंड में दीदी आती थी, बाबा आते थे, बाबा को थोड़ा बताते थे ये राय निकली, तो बाबा कहते थे बाबा की ये राय है, बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ये चाहते हैं। तो सबको ये महामंत्र मिला कि बालक बनकर के राय दो, और बालक बन के जो एक मत है उसको स्वीकार करो। तो ये जो मालिक और बालक जो शब्द निकले उन दिनों के थे, मैं समझती हूँ 65-66 में बालक भी बनो मालिक। तो बाबा जो हमें बताते हैं, कहते हैं, उसको आप इमीडिएटली जीवन में लाओ, तो आपका सम्मान भी बना रहेगा और सम्मान भी मिलता है। तो बालक है, मालिक है, तो ये भाग्य था कि हमारी दीदी मनमोहिनी दिल्ली में थी, और वो बहुत वो बस उनको यही होता था बाबा जो कहता है वो करता है। तो जयपुर में म्यूजियम बन रहा था, तो बाबा ने कहा कि बच्चियों से पूछो, हम लोग 12 के करीब कन्याएं थे, सुदेश दीदी थी, चक्रधारी दीदी थी, हम सब इकट्ठे ही थे उस टाइम। तो दीदी ने कहा बाबा चाहते म्यूजियम बने, हमने कहा ज्ञान का म्यूजियम कैसे बनेगा, हमें तो कोई आइडिया नहीं, हम सब ऐसे करके बैठ गए। तो दीदी मुझे देख के कहती है मोहिनी तुम भी हाँ नहीं कर रही हो। मैंने कहा हाँ तो क्यों नहीं करेंगे, पर पता तो कर क्या रहे है। बोला पहले हाँ बोल दो, मैंने कहा ठीक है, अभी तो मैं कॉलेज में थी, सैटरडे संडे फ्राइडे, जयपुर 5 घंटे की ट्रेन है, फ्राइडे जाकर के फिर रात को संडे निकलते थे सवेरे, फिर कॉलेज जाना होता था। और जयपुर में पहला म्यूजियम बना, किसी ने एक बहुत अच्छा, अभी भी मुझे नाम है, किशन पोल बाजार में बहुत बड़ी धर्मशाला दी। तो बाबा ने कहा बड़े बड़े चित्र तो बड़े तो बड़े बड़े चित्र बनाओ। तो मेरे साथ महेंद्र भाई थे भोपाल वाले, तो वही साथ में हम कर रहे थे उन दिनों में। ये गोपाल भाई, उनकी फैमिली, वो लोग वहाँ पर थे, उनके पास रहते थे, भोजन आदि करते थे, क्योंकि अपना स्थान तो था नहीं, पर इतने बड़े बड़े चित्र हमने बना दिए कि वो तो मकान ही गिरने वाला था जैसे। तो हमने कहा, बाबा कहता है बड़े बड़े, फिर हमने थोड़े छोटे बनाए, फिर म्यूजियम बना। तो ऐसे ऐसे बाबा, दीदी हमेशा कहती थी मेरे को, अच्छा तुम भी दान कर रही हो, क्योंकि उनको पता था कि कुछ भी प्रोजेक्ट होता था, हमें नहीं भी आता था तो हम कहते थे करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि अच्छा लगता है कुछ दया करो, कुछ बाबा की आज्ञा से कुछ चैलेंजेस भी लो तो अच्छा लगता है। तो ये हाँ जी जो है ना, ये बहुत बड़ा वरदान है कि मैं हाँ जी कह सकूं। तो एक बार दादी जानकी ने कहा कि, मैंने कहा दादी यहाँ तो बहुत डिमांड होती रहती है, कोई कहता है ये चाहिए, बोला ना नहीं बोला किसी को। मैंने कहा दादी कोई 100 चेयर चाहता है, अभी हमारे पास तो इतने पैसे है नहीं, बोला ना नहीं बोलो। तो मैंने कहा क्या बोले, समय पर मिलेगा, समय पर मिलेगा। तो जो हाँ कहता है ना, फिर युक्तियां भी दादी इतनी अच्छी अच्छी बताती थी। दादी जानकी कहती मोहिनी मैं कभी ना नहीं बोलो, उनको बोलो हाँ क्यों नहीं, जरूर मिलेगा, समय पर मिलेगा। मैंने वो फॉर्मूला यूज किया पीस विलेज में। एक बार वो कहने लगे मोहिनी बहन एक पिकअप ट्रक चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, एक ट्रक चाहिए, 5 चीजें थी। तो मैंने फोन रख दिया, मैंने कहा रॉन्ग नंबर, कॉल गॉड। मैंने सोचा कि 5 तरह की चीजें मैं एक दिन में, कहां जादू थोड़ी हो जाएगा। फिर भी मैंने कहा कि हाँ, मैंने फोन तो रख दिया, पर बाद में मुझे विचार चला, आप सोचेंगे कि 2 दिन के अंदर ये 5 चीजें आ गई। एक भाई थे फ्लोरिडा में, बोला मोहिनी बहन नया स्थान है, पिकअप ट्रक देना चाहता हूँ, मैं हर महीने पेमेंट कर दूंगा। किसी ने कहा हमारे पास बहुत अच्छी गाड़ी है, हम बाबा को देना चाहते हैं, आप लोग यूज करना। 5 चीजें 2 दिन के अंदर आ गई। तो देखो, एक जब हम हाँ कहते हैं तो हमने दूसरे के विचार को रिस्पेक्ट दी, हमने ध्यान दिया, चाहे मालूम है ये उचित नहीं है, टाइम नहीं है, हाँ समय पर हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। तो क्या होता है कि एक बाबा की आज्ञाकारी बनने से जो प्रकृति है और आत्माएं है वो भी सहयोगी बन जाती है। तो ऐसे कई छोटी छोटी बातें आज्ञाकारी बनने के लिए हमने सीखी। आज देखो आपके सामने बैठे हैं, वो हाँ जी के कारण ही पकड़ गए हम।
बिल्कुल।
निर्भय भाई ने बोला कि अभी आपको यज्ञ में पाठ बजाना है, मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं बोला, पर मैंने कहा कि थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य की बात है, आने जाने की बात है। फिर और क्या जवाब दे, उन्होंने मुझे 20 मिनट 25 मिनट हम क्यों कह रहे हैं, आपको ये क्यों कह रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी ठीक है, जो भी सेवा अपनी बाबा से ली है हमने यज्ञ से, वो हमें सेवा तो जरूर किसी भी तरह से जितनी भी कर सके कर डाल, हमारा फर्ज बनता है। तो इसलिए हाँ जी और आज्ञाकारी का एक एक हीरा कहे, वो पहला हीरा था मेरी अंगूठी बेटे में,
नौ रत्नों में से सबसे मुख्य हीरा। और खाली ये नहीं है दीदी, ये तो है, लेकिन आपको तो बाबा 20 साल पहले से ही यज्ञ के लिए तैयार कर रहे थे। शायद हो सकता है इस सभा में कोई बैठा हो जिन्होंने सुना हो, अव्यक्त बाप दादा ने लगभग 20 साल पहले ही दीदी जी को बोला था कि आप इंडिया के ऊपर में ज़्यादा ध्यान दो जब मीटिंग होते हैं ना ऐसे, क्योंकि दीदी तो बाहर ज़्यादा और यहाँ पर एक मास दो मास साल में पूरा, तो बाबा ने बोला था। तो बाबा की जो कही हुई बात है फिर वो आत्मा अपने धारणाओं से उसको स्वरूप में ला करके फिर आज ऐसा हम देख रहे हैं, है ना कमाल बाबा के। तो आज्ञाकारी का रतन, लेकिन जो युक्तियां बैलेंस सीखने का भी, बालक सो मालिक बनने का भी और एवर रेडी रहने का भी, ये सब कनेक्टेड हो गए, ये इंटरकनेक्टेड हो गया। तो फिर बाकी के रतन बाद में, नहीं तो इनको भूख लग जाएगी, या अभी कोई और रतन देंगे।
दूसरी बात मुझे बहुत पसंद आता था रूप बसंत की कहानी, और जब बाबा रूप बसंत कहता था ना तो मेरा चेहरा चमक जाता था कि ज्ञान भी सुनाए और अपना स्वरूप भी हो, रूप भी हो और बसंत भी हो। वो लोग दो थे पर मैं एक ही, बाबा मुरली में जब भी कहता मैं तो रूप बसंत हूँ, मुझे ऐसे अंदर में कहती थी मैं तो रूप बसंत हूँ। तो मैंने तो पहले लौकिक में भी जब भक्ति की तो भगवान के सामने हमेशा मुस्कुराते हुए जाती थी, एकदम ऐसे जाती थी कि वो देख के प्रसन्न हो, ये बच्ची तो बहुत ही प्रसन्न रहती है और वरदान दे, हमको कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मैं कहती थी बाप है उसको तो पता है, उससे क्या मांगे अभी। मुझे हमेशा ही होता था बात पिता है, भक्ति में भी गीत गाते थे ना, रात को आरती गाते थे, तुम ही हो माता तुम ही पिता हो, तो वो बहुत मुझे माँ बाप के लिए जो बाबा का प्यार था, तो मैंने इस पर बहुत अटेंशन रखा। जो सेवा हो उसमें अपना स्वरूप, हमें रूप बसंत बन के सेवा करनी है। कई मेरे से आज भी यही कहते हैं बिजी है सो उन्नति का टाइम नहीं है, मैंने कहा बिजी तो ब्राह्मण जीवन में पहले दिन से ही हो जाते, सारे विश्व को कल्याण करना है तो बिजी तो होंगे, और चाहते भी हम सर्विस बढ़े तो और बिजी होंगे, लेकिन लक्ष्य क्या था, मुझे रूप बसंत बनना है। दादी जानकी एक बार कोई गया, थोड़ा चेहरा छोटा हो गया था, क्या हो रहा है मुझे बहुत दर्द हो रही है, इधर बहुत दर्द हो रही है घुटने में, बोला मुंह में तो कुछ नहीं हो रहा ना, फिर तुम्हारा ये दर्द मुंह पर क्यों आया। दादी हमेशा कहती थी, फिर हंसी में कहती थी मोहिनी को देखो उसको भी दर्द होता है पर उसके चेहरे से नहीं पता लगता। तो कैसे हम अपने ब्रह्मा बाप की तरह हर्षित मुक्ता और मधुरता दोनों को बनाए रखें, उसके लिए अपने जीवन का लक्ष्य रूप बसंत बन रहा है, ये मेरा दूसरा हीरा है।
थैंक यू दीदी। तो बाकी के साथ के लिए आप तैयार रहना, ठीक है, खुश, चमक दिखाई दे रही है ना, दो रत्नों से ही इतनी चमक मिल रही है, और आगे भी हम जरूर सुनेंगे। थैंक यू दीदी। अभी दो मिनट बाबा की याद में बैठते हैं, फिर आराम से।
8 बजे तक योग होता है, 10 मिनट है ना?
अच्छा ठीक है,
योग करेंगे सर
8 बजे तक बैठे।
देखो बाबा कहते हैं संगठन का एक संकल्प, अगर संगठन एक संकल्प में बैठता है तो विश्व तक उसके वाइब्रेशन जाते। तो हम सभी ये 10 मिनट एक संकल्प लेंगे, मैं बाबा को प्रत्यक्ष करूंगी। आज क्लास कराना चाहती थी प्रत्यक्षता पर, कि एक एक आप जो है वो बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। आज तो टाइम नहीं है, पर प्रत्यक्षता पर अव्यक्त इशारे एक हफ्ते से आ रहे हैं। क्या कौन सी बात प्रत्यक्ष करेगी, कौन सी धारणा प्रत्यक्ष करेगी, उसके विस्तार में जाकर के मेरे द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष, मैं बाबा को प्रत्यक्ष करूंगा। जरूरी नहीं कि टेलीविजन के द्वारा होगा, रेडियो के द्वारा होगा, या भाषणों के द्वारा होगा, नहीं। तरीका बता रहे हैं बाबा कौन कौन सी बातें संगठन में हो तो प्रत्यक्षता होगी। तो हम क्या संकल्प रखते हैं, अभी कल बाबा परसों शिव जयंती भी है, सिर्फ झंडा नहीं लहराएंगे, बाबा हम आपको प्रत्यक्ष करेंगे, ऐसा संकल्प लेके हम 5-7 मिनट बैठते हैं।
खुशी